Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऋजं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शमनिजो वातित्रिणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति सन्नो भवतु भुवनस्यस्पति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैष्टुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम पुरी जी महाराज की। जैसा कि हमारे आदरणीय गिरीश भाई जी आप लोगों को संबोधित करते रहते हैं कि सुनाम धन्य बंबई में इस प्रेमपुरी रूपी कल्प वृक्ष के बीजारोपण करने वाले, जिसे हम संस्थापक भी कहते हैं, प्रेमपुरी जी महाराज की यह स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। उपनिषद में बात आती है ह्यात्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः, उपनिषद का ये मंत्र है। जो लोग स्वाध्याय करते उन्हें श्रवण करने का मौका मिला होगा। यदि आपको भूति का अर्थ है दैवित मानुषवित्त, दैवित और मानुषवित्त हासिल करना है तो विधान किया है आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः, ऐश्वर्य की कामना से आत्मज्ञानी की अर्चना का विधान है। क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, अन्यत्र भी आता है, वहां शंका किया है कि आत्मज्ञानी को पाप पुण्य लगते नहीं है, पर ज्ञान होने के अनंतर जो पाप होते हैं पुण्य होते हैं उसका फल किसे मिलेगा। चलता है पैसे चीटी मरेगी, कुछ इस तरह के स्वाभाविक कृत्य होते हैं। तो वहां पर श्रुति कहती है कि जो उसके सेवक हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, साधु कृत्याम उसके पुण्य कर्मों के फल को लेते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ याग करा रहा है या ज्ञान यज्ञ ही कर रहा है, तो उस ज्ञान यज्ञ की जो महिमा है अनंत फल होता है, उस अनंत फल का अधिकार उसके सेवक या उसके अर्चना करने वाले प्राप्त करते हैं। द्विषंतः साधु कृत्याम, और जो द्वेष ईर्षा करते हैं उन्हें वह पापीय कर्म प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञानी को पाप और पुण्य कर्म संश्लिष्ट नहीं होते हैं। इसलिए जैसा कि विधान है, और इस वर्ष है बड़ा ही सुंदर स्वर्ण निर्वाण महोत्सव है। अन्यत्र भी श्रुति कहती है कि यज्ञ महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञ महोत्सव के द्वारा ब्राह्मीयम का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की अनुकूल अपने अंतःकरण को संपादित करना चाहिए। हम जब व्रत महोत्सव मनाते हैं उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, इसी के माध्यम से कम हम सांसारिक काम धंधों को छोड़ करके इधर अग्रसर होते हैं। क्योंकि संसार में इतने काम धंधे जंजाल हैं कि मनुष्य को मौका ही नहीं मिलता है। परंतु जैसे देखो आज अनंत गणेश चतुर्थी है, कहीं नवरात्रि है मनाते हैं, दीपावली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, तो ये ऐसे ही एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार जो व्रत करते हैं, इस व्रत उत्सव के माध्यम से हम जो है संसार के कार्यों से जरा विराम प्राप्त करके इधर लगते हैं। ऐसे छोटे बच्चे को जो विद्यालय में नहीं जाता है, साक्षरता की महिमा को नहीं समझता है, उसे हम मिठाई देकर, खिलौना देकर, फुसला करके उधर लगाते हैं। जैसे विद्या की महिमा समझ लेता है वैसे अपने आप जाता है। तो हमारे ऋषियों ने व्रत का यज्ञ का ये जो समायोजन का तरीका बताया है, इसके द्वारा हम अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां वैभूत हैं, प्राण चिखाने व्यतिणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्य दिनांतरात्मन, इंद्रियां स्वभाव से बाहरी विषयों को ही ग्रहण करती हैं, चिंतन करती हैं, और हमेशा विषयों को पाने के लिए लालायित रहती है। हालांकि ये विषय बिल्कुल व्यर्थ है, विषय से सुख असंभव है, फिर भी अनादिकाल से सुखाध्यास है। सुखाध्यास का मतलब होता है कि सुखत्व के अभाव वाले संसार में विषय में सुख बुद्धि हो रही है, तो सुखाध्यास से हमारे मन को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए, यथार्थ ज्ञान कराने के लिए ऋषियों ने यज्ञ याग व्रत उत्सव महोत्सव का विधान किया है, जिसके जरिए हम लोग अंतर्मुखता को प्राप्त होते हैं। और अंतर्मुख होते ही जो जीवन का परम लक्ष्य है आत्मानंद, उसकी झलक मिलती है। तो आइए जो प्रकृति प्रसंग है, हम लोग शिव महिमा के ऊपर विचार कर रहे हैं। छठवां श्लोक चल रहा था, उच्चारण पहले कर लें। अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्र त्यमरवर संशेरत इमे। अजन्मानो लोकः किम अवयवन्तोऽपि जगताम्। पहले इसका शब्दार्थ देख लें अन्वय के साथ, क्योंकि संस्कृत के श्लोक होते हैं उनका अन्वय करना पड़ता है। अन्वय दो तरह होता है, दंडान्वय खंडान्वय। भगवान भाष्यकार अक्सर श्रुतियों का या उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, जहां भी भाष्य लिखते हैं वो जो है दंडान्वय है, खंडान्वय नहीं, मतलब सीधा अन्वय करते हैं। सुविधा के लिए। पर श्लोक में तो दोनों होता है, डंडा ने भी खंडा। डंडा ने बोलते हैं इसे डंडा सीधा होता है, सीधे करना। और खंडा ने मतलब कि आगे पीछे जहां जैसी सुविधा हो। तो यहां पर देखो खंडान्वय डंडान्वय नहीं है। अमरवर संबोधन बिल्कुल नीचे आया है अंतिम में, है ना, यह तो मंदास त्वाम प्रत्यमरवर। तो अमरवर को पहले रखना पड़ेगा अन्वय करने के लिए। अमरवर मतलब कि देवताओं में श्रेष्ठ। अवयवंत का अर्थ है जो टूट न सके। कहा अमरवर नीचे है, अवयवंतो ऊपर है, फिर भी अन्वय करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हे देवाधिदेव महादेव, देवताओं से पूज्य, यह जो अवयवंत संसार है, जो अवयव होता है वही जुड़ता है और टूटता है। ये संसार अवयव वाला है। जैसे हमारे हाथ पाद आंख नाक कान सब अवयव हैं, शरीर से जुड़े हैं, अलग भी हो जाते हैं, ऐसी ये संसार भी अवयव वाला होने से इसका नाश भी होता है। अपि मतलब भी, लोकाकार ये जो आपके 14 भुवन हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, अतल नीतल सूतल गभस्तिमान तलातल महातल पाताल, इस 7 नीचे, और भूर भुव स्व मह जन तप सत्यम, इस 7 ऊपर है। तो 14 जो लोक है, अजन मानह किम, क्या यह बिना उत्पत्ति के हो सकता है? तार्किक आक्षेप करता है तो कहते हैं कि नहीं, असंभव है। जो भी अवयव वाला होता है उसको कोई न कोई बनाने वाला होता है। जगताम भव विधि, जगता मतलब संसार का, भव विधि का अर्थ है उत्पत्ति सृष्टि क्रिया। अधिष्ठातारम अनादृत्य, अधिष्ठाता जो कार्थे कर्ता, उसका अनादृत्य कार्थे तिरस्कार करके, उसके बिना किम भवति, क्या संसार उत्पन्न हो सकता है? तो कहते नहीं, असंभव है। वा मतलब अथवा, अनिशा भुवन जन्ने कुरियात, अनिशा मतलब कि ईश्वर से भिन्न, चाहे वह परमाणु हो, प्रधान हो, या शून्य हो, या स्वभाव हो, कुछ भी ईश्वर से भिन्न है, वह क्या संसार को बना सकता है? कहते ये भी असंभव है। और बनाएगा तो कह परिकरा, सामग्रियां क्या होगी? यतः इमे मंदा, जिस कारण से, इमे मतलब ये जो मंद बुद्धि वाले हैं, ये लोग आपके प्रति, त्वाम प्रति संशयरते, ऐसा अन्वय करना, त्वाम प्रति संशयरते। देखो त्वाम पहले है, संशयरते में बाद में है, तो आपके प्रति इस प्रकार से संदेह किया करते हैं। ये तो हो गया शब्दों का अर्थ। अब जरा इसके ऊपर हम लोग विचार कर ले। सबसे पहला शब्द है कि यह जो अजन मानो लोका किम अवयवंतोपि जगताम, ये संसार है अवयव वाला। जो भी अवयव वाला होता है वह उत्पन्न होता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके माता पिता न हो। तो इतना बड़ा संसार जो बना है उसके भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। जैसे कि एक घड़ा है या मकान है, छोटे से घड़े को भी बनाने के लिए कारीगर की जरूरत पड़ती है। एक मकान को तैयार करने के लिए कुशल कारीगर को ढूंढते हैं। ऐसे ही यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई कारीगर होगा। हम लोगों में से कोई भी सब ब्रह्मांड को बना नहीं सकता है, क्योंकि जो हिमालय की ऊंचाई है, सागर की गहराई है, ये नदियों का प्रवाह है, इसको जीव बना नहीं सकता है। एक छोटा सा चना है, उस चने को हम धरती में डालते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है। उस अंकुर को किसने उत्पन्न किया? नैयायिक लोग अनुमान करते हैं, क्षित्यंकुरम सकर्त्रिकम कार्यत्वाद घटवत। ये क्षिति मतलब पृथ्वी में जो अंकुर उत्पन्न हो रहा है, उसको जो बना रहा है वही ईश्वर है। चाहे वह भले ही हमें दिखाई न पड़े, परंतु नास्तिक लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, ये तो अवयव का पुंज है, परमाणुओं का पुंज है, परमाणु से द्वेणुक हुआ, द्वेणुक से त्रिणु, पंचाणु, इस क्रम से ये पृथ्वी बन गई। तो ये जो जैन बौद्ध दार्शनिक है, इनका कथन है ये जो है परमाणुओं का पुंज है, उसको संघातवाद कहते हैं। इनका शब्द संघातवाद है, संघात का अर्थ है समुदाय हिंदी भाषा में। तो जैन बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि संघातवाद ये जगत है, परमाणु के समुदाय से संसार उत्पन्न हुआ, इसके लिए अलग से परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर इसको नहीं बनाता है, स्वाभाविक है। सृष्टि ये केवल परमाणुओं से नहीं बन सकता, जल चीज में तो संभव है, पर जो चेतन मनुष्य है ये चेतन में परमाणु से होना संभव है, ये परस्पर एक दूसरे के अदृश्य से बनता है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। संघातवाद का खंडन हमारे पूर्व मीमांसक जैमिनीय दर्शन करता है, वह कहता है कि बिना अदृष्ट के संसार उत्पन्न नहीं हो सकता है। अदृष्ट बोलते हैं पाप पुण्य धर्माधर्म, जैसे कि हम गाय को घास खिलाते हैं, घास खिलाने के बाद गाय हमें दूध देती है, यदि गाय दूध न दे तो कोई भी घास नहीं खिलाएगा, उसको गौ माता भी नहीं बोलेंगे लोग। ये परस्पर उपकार उपकारक भाव है, गाय को हमने घास खिलाई, गाय ने दूध दिया, तो दूध से हमारा उपकार हो रहा, घास से गाय का। ऐसे ही ये मीमांसक मानते हैं कि जीवात्माओं की अदृष्ट से उस चैतन्य में संकल्प हुआ और उस परमात्मा के अदृष्ट से ये जीवात्मा उत्पन्न हुए। तो जगत का मूल अदृष्ट मानता है, परस्पर उपकार उपकारक भाव, ये पूर्व मीमांसक ऐसा कहा करते हैं। परंतु वेदांत इसके विपरीत कहता है, वेदांत कहता है कि स्वयं ऋग्वेद की श्रुति है, पुरुष एवेदम इदम सर्वम, इस सब कुछ परमात्मा ही है, जितना भी जड़ चेतन आपको दिखाई दे रहा है ये परमात्मा का स्वरूप। और वास्तव में देखा जाए तो ये जड़ है नहीं, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, ये वेदांत का सिद्धांत है। दृष्टांत के तौर पर हमारे सिर में जो जू होती ना, जो काटती है, यदि आप उस जू से पूछें कि बताओ भाई तुम कहां रहती हो, तो क्या बोलेगी कि मैं जंगल में रहती हूं। ये जो हमारा बाल है ना, बाल उस जू के लिए बड़ा भारी जंगल है। अब आपके सर में कोई फोड़ा हो जाए तो जू को कोई लेना देना नहीं, उसके लिए एक जंगल है, बढ़िया और हो गया फोड़ा हो गया। तो ऐसे ही अज्ञानियों के दृष्टि से जैसे जू को ये आपका सर और बाल ये जंगल है, पहाड़ है, क्योंकि वह छोटी सी जो जीव है जू, वो आपके पूरे अंग का अनुभव नहीं कर सकती, सामर्थ्य नहीं है। ऐसे जीवात्मा उस व्यापक चैतन्य के सत्ता का अनुभव न होने से एकता की जड़ है और चेतन है। इसी बात को कविकुल तार्किक कालिदास जी ने अपने निबंध में लिखा है, अस्तुत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयोनाम नगाधिराज, अत्यंत प्रमाणिक श्लोक है। जब भारत का वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास जी, तो वे कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में एक साक्षात देवस स्वरूप है हिमालय, जो कि पर्वतों का राजा है, नगाधिराज। महाकवि कालिदास जी ने भी हिमालय को जड़ नहीं माना है, बल्कि उसको कहा है कि साक्षात ये चैतन्य का स्वरूप है जो शत्रुओं से रक्षा किया करता है। अंतर्यामी ब्राह्मण में वेदांत के अंतर्गत जो आता है, वहां भी आया है कि यह पृथिव्याम तिष्ठन, यम पृथ्वी न वेद यश पृथ्वी शरीरम तयेश आत्मा अंतर्यामी अमृत। बहुत लंबा प्रसंग है, अंतर्यामी ब्राह्मण के पाठ करने से जो है कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होता है। हमारे दशम कैलाश पिताश्वर जी महाराज प्रत्येक दिन किया करते थे, कई बार हमने देखा। छोटा सा अंतरा में ब्राह्मण है, उसमें बार बार बतलाया है कि वह परमात्मा मतलब कि विशिष्ट और सामान्य रूप से व्यापक है। पहले विशिष्ट वस्तु का चर्चा किया है पृथ्वी आदि का, फिर अंत में कह दिया कि वह सर्वत्र व्यापक है। तो जो पृथ्वी के अंदर परमात्मा है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसको पृथ्वी देवता जान नहीं पाते हैं, वही तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं प्रत्येक दिन, और भक्त लोग प्रातः काल उठने के बाद प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे, प्रार्थना करते हैं ना। समुद्र तो आपका वस्त्र है, पर्वत आपके स्तन हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, पर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, बिना पैर रखे काम नहीं चल सकता है, आप इस अपराध को क्षमा करना। जहां पर हम रात दिन रह रहे व्यवहार कर रहे, उस देवी का भी हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, बस मान करके क्रिया करते हैं। तो विचार कीजिए, कोई चंद्रमा में जाए चंद्र लोक में, और वहां कहे कि चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ, जब बेचारा इतना बुद्धिमान तार्किक वैज्ञानिक होकर के भी इस पृथ्वी देवी का प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो चंद्रलोक में जाके चंद्र देवता कहां से प्रत्यक्ष करेगा। ये सब क्या है ना कि ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष होता है। भगवान ने गीता में इस बात को बतला दी है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्म योगमैश्वरम। भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि मेरे दिव्य रूप को तू देख, अर्जुन चारों तरफ देखने लगा, ऊपर नीचे आंख घुमाकर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने कहा देख, इस तेरे चरम चक्षु से दिखाई नहीं पड़ेगा, तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, तब जाकर तू इसका अनुभव कर सकेगा। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तब जाकर अर्जुन को उस विराट रूप का दर्शन हुआ। विराट मतलब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वत्र चेतन रूपता को से अनुभूति हुई। तो वेदांत का सिद्धांत है कि ये जो जगत है चिन्मय है, ये पूरा ब्रह्ममय है। ये जो आकार प्रकार दिखाई दे रहा, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर अपने लिए तो ये जो है इसमें चैतन्यता अनुभूति प्रतीति है। कहीं इंग्लिश में वो कहानी पढ़ाते हैं ना कि कहीं व्यक्ति सागर के उस पार चला गया, तो वहां के बहुत छोटे छोटे जीव चींटी जैसे उसके ऊपर चढ़ गए। बहुत लंबी कहानी है, अंग्रेजी में आती है। तो देखो, उन जीवों के लिए हमारा शरीर पहाड़ बन गया, उनके लिए यही शरीर पहाड़ है। ऐसे ही जितना भी चराचर जगत है परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वेदांत कहता है कि जगत का कारण अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी हो नहीं सकता। ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत तर्क देता है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई माँ बाप न हो, कोई नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि ईसा मसीह बिना माँ बाप के पैदा हुए, पर गॉड को तो मानते हैं ना, उनसे पैदा हुए। आखिर में मजबूर होकर मानना पड़ा कि उनके पिता गॉड है, भगवान है। तो ये जो संसार है अवयव वाला है, इसलिए इसका भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। पारिशेष्या तो इसका कर्ता वह परमात्मा ही है। आगे आता है, अधिष्ठातारम अनादित्य किम भवविधि भवती। उस अधिष्ठाता को छोड़कर जगतकर्ता को क्या यह संभव है कि जगत उत्पन्न हो सके। जैसे कि हम घड़ी बनवाते हैं, तो घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी वाले के पास जाते हैं, उससे कहते घड़ी बना दो, तो क्या बोलता है कि मेरे पास घड़ी बनाने के भी औजार नहीं है, बिना औजार के मैं घड़ी ठीक नहीं कर सकता। वैसे उस वह जो ब्रह्म है परमात्मा है, इस संसार को बनाया तो कौन से हथियार थे जिससे कि संसार का निर्माण किया, ये दूसरे पद से ऐसा शंका किया है। यहां पर उत्तर दिया कि वह है माया शक्ति, तबैश्वर्यम, ऐश्वर्य मतलब माया शक्ति से बनाता है। तीसरे तार्किक ने शंका किया, अनिशो वा कुरियाद, ये जीवात्मा ही संसार को बना दे, क्या फर्क पड़ना है, इसे हम छोटे हैं, कोई बड़ा भारी हमसे जी होगा उसने संसार को बना दिया। तो कहते हैं यदि उसने बनाया तो यह बताओ कि जब बनाया तो परिकर क्या था, परिकर बोलती सामग्री को, कौन सा धातु लिया, पदार्थ लिया, इसको लेकर के उसने ब्रह्मांड को बनाया। और बनाने यदि आप ऐसा मानते जीवात्मा ने बनाया, या जो है कहते शून्य से हो गया, परमाणु से हो गया, क्षणिक विज्ञान से उत्पन्न हुआ, तो फिर चैतन्यता कैसे हो रही है। हमारे पूरे शरीर में चैतन्यता है, यदि हम चैतन्य को कारण नहीं मानेंगे तो चैतन्यता नहीं बन सकती है। रूस में एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कुछ परीक्षण किया, एक कुत्ता को लिया, कुत्ते के पेट में एक यंत्र लगा दिया और दूर एक घंटी बांध दी, ठीक समय से घंटी बजाते 11-12 बजे और उसको भोजन देते। उन्होंने यह परीक्षण किया कि हम देखते हैं कि घंटी के साथ इस कुत्ते के पेट में क्या स्राव होता है। टाइम बांध दिया कि 12 बजे भोजन देना है, शाम को 4 बजे दूध पिलाना है, इसके बाद उसको मांस खिलाना है, 3 टाइम बांध दिया। जैसे ही घंटी बजती उन्होंने यंत्र के माध्यम से देखा कि कुत्ता कान से घंटी सुनता, सुनने के बाद तत्काल यंत्रों को हमेशा देखते थे, घंटी सुनते ही उसके पेट में एक विशेष स्राव होता था। जैसे हम लोग कोई नींबू काटता है ना तो देखते हैं तो जीभ में पानी अपने आप आता है, जीभ में जल का स्राव होता है, या सौंदर्युक्त पदार्थ देखे तो मन में मोह होता है, देखा देखी आंख ने रूप को पर मन में मोह हुआ। कोई मान लो हमारा दुश्मन हो जा रहा हो तो देखा हमने आंख से, पर विक्षेप कहाँ होता है, अंतःकरण में, कि आंख लाल हो जाती है, शरीर तमतमा जाता है। तो यही परीक्षण किया कुत्ते के ऊपर कि जैसे घंटी बजती उसके पेट में विशेष प्रकार से स्राव होता। कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, घंटी तो बजाए पर भोजन न दे, तो स्राव होता था, फिर कुत्ता चिल्लाता था, और बिना टाइम के फिर भोजन दे तो कुत्ता फिर बीमार हो गया। तो विचार कीजिए, आंख पेट से अलग है, कान भी अलग है, आंख ने घंटी सुनी, पेट में विशेष प्रकार से स्राव हुआ और आंख इधर उधर देख रही है कि भोजन आ रहा कि नहीं आ रहा, तीनों एक दूसरे से भिन्न है, आंख कान से अलग है और ये दोनों पेट से अलग है, फिर भी एक ऐसा चैतन्य तत्व है जो तीनों का संबंध बनाता है, और तीनों के संबंध होने के कारण से एक साथ क्रिया होती है। तो बात धोकर के हमें यह मानना पड़ता है कि जगत कर्ता को एक नियंता है जो चैतन्य है। जड़ को मानेंगे तो संबंध नहीं बन सकता है, परमाणु को माने तो भी ये संबंध बनना असंभव है। तो इस श्लोक में नास्तिकों के तर्क वितर्क को दिखलाया। अब आप सातवें श्लोक में देखिए, वहां पर ये बतलाएंगे कि आस्तिक लोगों की क्या मान्यता है।